एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो आपको बेचैन कर देगा, शायद सोचने पर भी बहुत मजबूर कर देगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे कॉस्बी के अवार्ड विनिंग नॉवल ऑल द सिनर्स ब्लीड की।
हाँ।
और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर दें, इसके लेखक हैं ऐसे कॉस्बी।
बिल्कुल, एडम लेजा व्हाइट तो इसके ऑडियो बुक नरेटर हैं, और क्या कमाल का काम किया है उन्होंने भी।
हाँ, लेकिन कॉस्बी के कलम में जो मतलब एक बिजली और दर्द दोनों हैं, वो कमाल है। उन्हें आजकल सदर्न नॉयर या कह लीजिए रूरल नॉयर जॉनरा का सबसे बड़ा नाम माना जाता है।
सही, वो अमेरिकी साउथ की उस सच्चाई को लिखते हैं जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, नस्ल, गरीबी और वो इतिहास जो कभी गुजरता ही नहीं।
और उनकी लिखने की शैली
कमाल की है। भाषा बहुत काव्यात्मक है, खूबसूरत है, लेकिन जो वो दिखा रही है वो उतना ही क्रूर और भयानक है।
बिल्कुल।
आज हम इसी उपन्यास की परतों को खोलेंगे। ये एक छोटे से शहर में न्याय, आस्था और इतिहास के बीच की एक खूनी लड़ाई है।
और ये कहानी एक सीधा सवाल पूछती है, जब शैतान आपके पड़ोस में रहता हो हाथ में बाइबल लिए हुए, तो आप न्याय कैसे पाएंगे?
चलिए कहानी के माहौल से ही शुरू करते हैं। वर्जीनिया का एक काल्पनिक शहर है शैरन काउंटी।
शैरन काउंटी।
यहाँ की हवा में सिर्फ उमस नहीं है, बल्कि सदियों का बोझ है, अनकहे राज है। लेखक ने इस जगह को ही एक किरदार बना दिया है।
बिल्कुल।
और इस जगह का नाम शैरन भी कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे तो ये ग्रीक माइथोलॉजी के उस नाविक शैरन की याद दिलाता है।
अच्छा।
हाँ, जो आत्माओं को एक नदी पार कराता था, न्याय की नदी।
क्या कनेक्शन है।
और यही तो हमारे हीरो टाइटस क्राउन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन खोई हुई, सताई हुई आत्माओं को न्याय की नदी पार कराने की कोशिश में है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ तो नदी ही जहरीली है।
हाँ, टाइटस क्राउन एक पूर्व एफबीआई एजेंट जो अपने होमटाउन लौटकर शैरन काउंटी के पहले अश्वेत शरफ बने हैं।
और यहीं से मतलब कहानी का असली तनाव शुरू होता है। सोचिए, टाइटस उस सिस्टम की वर्दी पहने हुए है जो पीढ़ियों से,
जो उन्हीं के जैसे लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल होता आया है।
हाँ, वो एक ही समय में उम्मीद का प्रतीक भी है और कई लोगों के लिए नफरत का निशाना भी।
और वो कोई टिपिकल हीरो नहीं है। एफबीआई में हुए एक पुराने केस ने न सिर्फ सिस्टम से बल्कि खुदा से भी उनका भरोसा उठा दिया है। वो सवालों से घिरे हैं।
अपने ही शहर में एक बाहरी इंसान, अश्वेत समुदाय उनसे चमत्कार चाहता है और श्वेत समुदाय उन्हें शक और नफरत से देखता है।
नॉवल में एक लाइन है जो उनकी हालत को मतलब पूरी तरह बयां कर देती है। टाइटस को अक्सर लगता था कि उसकी छाती पर लगा शेरिफ का सितारा उसकी रक्षा के लिए ढाल नहीं, बल्कि इसके दिल पर बना एक निशाना है।
उफ, और कॉस्बी इस तनाव को बिल्ड होने का जरा भी वक्त नहीं देते। वो पहले ही पन्ने से कहानी में एक धमाका कर देते हैं।
हाँ, स्कूल शूटिंग।
शहर के स्कूल में एक शूटिंग होती है। एक बहुत ही सम्मानित श्वेत टीचर मिस्टर स्पीयरमैन को उनका ही एक पूर्व अश्वेत छात्र लैटरल मैकडोनल्ड मार देता है।
और जब टाइटस और उनकी डिप्टी वहां पहुंचते हैं तो मुठभेड़ में लैटरल भी मारा जाता है।
और बस, शहर में आग लग जाती है। ये घटना तुरंत एक नस्लीय मुद्दा बन जाती है।
बिल्कुल, कुछ के लिए ये पुलिस की बर्बरता है, दूसरों के लिए एक अश्वेत लड़के का हिंसक हो जाना। पहली नजर में ये एक बहुत जानी पहचानी कहानी लगती है ना?
हाँ, हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं। हम सब सोच रहे होते हैं कि कहानी अब किस दिशा में जाएगी, लेकिन यही कॉस्बी एक ऐसा ट्विस्ट लाते हैं जो सब कुछ
बदल देता है।
हाँ, जब पुलिस लैटरल का सामान चेक करती है तो उसके फोन में कुछ वीडियोस मिलते हैं और उन वीडियोस से एक भयानक सच सामने आता है।
वो
सम्मानित टीचर मिस्टर स्पीयरमैन कोई हीरो नहीं था। वो एक राक्षस था जो लैटरल और दूसरे बच्चों का यौन शोषण कर रहा था।
ओह, तो लैटरल का हमला वो हिंसा नहीं बल्कि एक बच्चे का हताशा में लिया गया बदला था।
बिल्कुल, ये रेवलेशन तो कहानी की जमीन ही हिला देता है
पूरी तरह से। अब ये केस पुलिस की बर्बरता का नहीं रहा, अब ये एक बहुत गहरे और घिनौने राज की पहली परत है जो उधड़ी है।
और मरने से पहले लैटरल के आखिरी शब्द थे, जंगलों में एक शैतान है। पहले तो ये किसी को समझ नहीं आया, लेकिन अब ये शब्द एक भयानक पहेली की चाबी बन जाते हैं। टाइटस समझ जाता है कि वो किसी एक हत्यारे को नहीं बल्कि एक बहुत बड़े और ऑर्गेनाइज्ड शैतान को ढूंढ रहा है।
यहीं से नॉवेल एक क्राइम थ्रिलर से कहीं ज्यादा हो जाता है ना? ये एक सवाल बन जाता है, ऐसी जगह पर न्याय का क्या मतलब है जहां पाप को धर्म के लबादे में छपाया गया हो
और बुराई अच्छे लोगों का मुखौटा पहने घूम रही हो।
हाँ,
और टाइटस जब इस धागे को पकड़कर आगे बढ़ता है तो उसे दूसरे लापता अश्वेत बच्चों के पुराने केस मिलते हैं।
अच्छा, वो केस?
हाँ, वो केस जिन्हें पिछले श्वेत सेरिफ ने ये कहकर बंद कर दिया था कि ये बच्चे तो घर से भाग गए होंगे।
और उसे हर क्राइम सीन पर एक निशान मिलता है, वो भेड़िए के सिर वाला।
हाँ, भेड़िए के सिर की एक भद्दी सी नक्काशी, और ये निशान दो चीजों को जोड़ता है। एक तो उस इलाके की पुरानी लोक कथा जिसमें जंगलों में घूमने वाले एक शैतानी भेड़िए का जिक्र है,
और दूसरा?
दूसरा ज्यादा खतरनाक है। ये निशान शहर के काले इतिहास को आज के अपराधों से जोड़ता है, वो इतिहास जिसमें लिंचिंग और नस्लीय हिंसा आम थी।
मतलब जैसे अतीत का खून आज भी जमीन से रिस रहा हूं।
बिल्कुल।
तो विलन कोई एक साइको किलर नहीं है?
नहीं, विलन एक सोच है, एक सिस्टम है। ये बुराई द चर्च ऑफ द होली रेमिनेंट नाम के एक कट्टरपंथी चर्च के अंदर काम कर रहे एक श्वेत वर्चस्वादी पंथ के रूप में सामने आती है।
ओ गॉड।
ये लोग ईसाई धर्म की पवित्र किताबों की बातों को तोड़ मड़ोड़ कर अपने घिनौने कामों को सही ठहराते हैं।
किस तरह?
उनका मानना है कि वो अश्वेत बच्चों की बलि देकर दुनिया को पाप से साफ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में ये बच्चे इंसान से कम हैं।
ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बुराई रैंडम नहीं है, ये पूरी तरह से वैचारिक है, सिस्टमिक है,
पीढ़ियों से चली आ रही नफरत का नतीजा है। नॉवल में एक लाइन है, शेरन काउंटी के लोग सिर्फ ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वे उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे।
वाह, ये दिखाता है कि कैसे आस्था को नफरत फैलाने का एक औजार बनाया जा सकता है।
इस अंधेरे सफर में टाइटस को सहारा देने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन वो भी इस तूफान के बीच में है। उनके पिता हैं अल्बर्ट क्राउन, वो एक पादरी हैं।
उनकी आस्था अटूट है।
हाँ, और वो अपने बेटे के लिए एक नैतिक दिशा दिखाने वाले ध्रुव तारे की तरह हैं, भले ही टाइटस का खुद का विश्वास डगमगा चुका हो।
और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई है मार्क्वेस।
हाँ, वो बहुत गुस्से में रहने वाला निंदक किस्म का है। वो उस समुदाय के गुस्से की आवाज है जिसे टाइटस अपनी वर्दी की वजह से खुलकर नहीं दिखा सकता।
दोनों भाइयों के बीच का वो तनाव भी कहानी को एक और लेयर देता है।
और फिर है डार्लीन, टाइटस की प्रेमिका। वो टाइटस के लिए एक नॉर्मल जिंदगी की उम्मीद की तरह है, एक ऐसी दुनिया जहां उसे हर वक्त मौत और नफरत से नहीं जूझना पड़ता।
लेकिन जैसे जैसे टाइटस सच के करीब पहुंचता है, ये दुनिया भी खतरे में पड़ जाती है।
बिल्कुल। वो लोग जिन्हें लास्ट वुल्फ कहा जाता है, अब टाइटस को पर्सनली टारगेट करना शुरू कर देते हैं।
मतलब अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, अब ये एक पर्सनल जंग बन गई है।
हाँ, उसके पिता के चर्च पर हमला होता है, उसके साथी डिप्यूटीज को धमकियां मिलती हैं। अब ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपने लोगों को बचाने की एक हताश दौड़ बन जाती है।
और इसी पॉइंट पर टाइटस को एहसास होता है कि वो बिल्कुल अकेला है।
वो सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम ही शायद इस बुराई का हिस्सा है। उसे कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करना पड़ता है।
और यही एक अच्छे इंसान होने की परिभाषा धुंधलाने लगती है ना, जब राक्षसों से लड़ना हो तो क्या आपको भी राक्षस बनना पड़ता है?
न्याय और बदला लेने के बीच की लाइन टाइटस के लिए बहुत बहुत पतली हो जाती है।
कहानी का क्लाइमैक्स वो तो चर्च ऑफ द होली रेमिनेंट में एक भयानक तूफान के बीच होता है।
वो सीन बहुत ही ब्रूटल, खूनी और हिंसक है। कॉस्बी कुछ भी छिपाते नहीं है। ये सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये टाइटस की अपनी आत्मा, अपनी आस्था के लिए भी एक लड़ाई है।
और वो उन हथियारों का सामना करता है
और किसी तरह जिंदा बच जाता है, लेकिन उसे गहरे जख्म मिलते हैं, जिस्म पर भी और रूह पर भी।
तो आखिर में न्याय होता है?
ये इस पर निर्भर करता है कि हम न्याय किसे कहते हैं। हत्यारे मारे जाते हैं, पंथ का पर्दा फाश हो जाता है, एक तरह से न्याय अपने सबसे आदिम, सबसे हिंसक रूप में मिलता है। लेकिन यहाँ कोई जीत का जश्न नहीं है, कोई हीरो वाली फीलिंग नहीं है।
हाँ, शेरन काउंटी टूट चुका है, सभ्यता का जो पतला सा नकाब था वो उतर गया है, और उसके नीचे की सड़ांध वो सबके सामने है।
हाँ, उपन्यास में कहा गया है उसने सच्ची बुराई का चेहरा देखा था, और वो सींग और पूंछ वाला कोई राक्षस नहीं था, वो उसके पड़ोसी का चेहरा था।
यही इस कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई है। बुराई कोई बाहर से आया दानव नहीं है, वो हमारे समाज के अंदर ही पनपती है,
जिसे हम हर रोज देखते हैं।
और टाइटस का क्या होता है? उसने लोगों को बचाया, लेकिन इसकी क्या कीमत चुकाई?
उसने जाने बचाई हैं, लेकिन अपनी मासूमियत, अपनी आस्था और एक बेहतर दुनिया की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो सब खो दिया है।
नॉवल के अंत में वो इस सवाल से जूझ रहा है कि इन राक्षसों से लड़ते लड़ते वो खुद क्या बन गया है।
हाँ, अंत बहुत उम्मीद भरा नहीं है, ये बताता है कि राक्षस भले ही मर गए हों, लेकिन जिस नफरत ने उन्हें पैदा किया था वो आज भी शेरन काउंटी की मिट्टी में जहर की तरह मौजूद है।
यह उपन्यास बहुत सारे मुश्किल सवाल एक साथ उठाता है। एक तो है न्याय और कानून के बीच का फर्क।
बिल्कुल।
टाइटस को बार बार लगता है कि असली न्याय के लिए उसे कानून को ताक पर रखना होगा। ये बहुत ही असहज करने वाला सवाल है।
दूसरा बड़ा थीम है आस्था का भ्रष्टाचार। कैसे धर्म को नफरत का हथियार बनाया जा सकता है? ये पंथ अपने हर घिनौने काम को भगवान का हुक्म मानता है।
और अतीत का साया, ये तो पूरी कहानी पर हावी है। इतिहास कभी मरता नहीं है।
वो आज भी हमारे फैसलों पर असर डालता है। शेरन काउंटी की नस्लिया हिंसा का अतीत ही आज के अपराधों की जड़ है।
और आखिर में ये कहानी पूछती है कि एक टूटे हुए सिस्टम में एक अच्छा इंसान बने रहने का बोझ क्या होता है।
और टाइटस क्राउन का किरदार इस बोझ का जीता जागता सबूत है। और इन सब भारी भरकम विषयों को कॉस्बी की लेखनी एक अविश्वसनीय अनुभव बना देती है।
जैसा हमने कहा, उनका गद्य खूबसूरत भी है और क्रूर भी।
हाँ, वो हमें टाइटस के दिमाग के अंदर ले जाते हैं। हम उसके डर, उसके गुस्से, उसकी दुविधा को महसूस करते हैं। सदन गॉथिक का जो माहौल उन्होंने बनाया है वो आपको अंत तक जकड़े रहता है।
तो कुल मिलाकर ये उपन्यास पढ़ना एक आसान अनुभव नहीं है। ये आपके हिलाकर रख देगा। ये कोई आसान जवाब नहीं देता, बल्कि आपको न्याय, नफरत और उम्मीद के बारे में कई मुश्किल सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है।
ये जीत की नहीं बल्कि किसी तरह जिंदा बच जाने की कहानी है।
सही कहा। ये दिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत सिर्फ सांस लेते रहना होती है, भले ही आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हों।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा दानव कोई और नहीं बल्कि हमारे समाज के भीतर ही छिपा होता है, जो नफरत और पूर्वाग्रह से पोषित होता है।
और ये भी कि न्याय केवल व्यवस्था का काम नहीं बल्कि नैतिक साहस की एक व्यक्तिगत लड़ाई है जिसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।